फिर आप देखिए कि कुछ लोग ऐसे हैं ना कि जिनको अल्लाह सुब्हान ताला किसी मुश्किल में जब डाल देते हैं तो वो उसके बदले में आखिरत में अगर बच गए, पहली बात, और दूसरी बात है कि अगर मुश्किल ना आती किसी पे भी तो कमरे इम्तिहान क्या है। आप बच्चों को और ऐसे लोगों को इस तरह डील कर सकते हैं कि देखिए वी आर इन एन एग्जामिनेशन हॉल, इम्तिहान में पेपर्स में सारे आसान सवाल तो नहीं आते, मुश्किल क्यों आते हैं, ताकि जिन्होंने पढ़ा है उनको अच्छे नंबर मिले। अगर सारे पेपर में सवाल आसान हो या कुछ भी ना सवाल दिए जाएं तो फिर अगला दर्जा कहाँ मिलेगा। फिर आप देखिए कि जो काम अच्छे हैं उसमें हुक्म और इजाजत के साथ साथ अल्लाह की खुशी भी शामिल है, इसके बरक्स जो बुरे काम है, खराब काम है, वो भी अल्लाह की इजाजत से ही होते हैं लेकिन अल्लाह की खुशी उसमें शामिल नहीं। पहले वालों को अल्लाह की रजा कहते हैं और दूसरे वालों को अल्लाह की मशीयत कहते हैं। तो छोटी छोटी बातें जहनों में डाल दें, और आपको इस पे इंशाल्लाह जब हम आगे आएंगे अल्लाह के नाम अल-कादिर, अल-कदीर, अल-मुक्तदिर, तो उसमें आपको मजीद हिकमतें मिलेंगी। हमें तो ये फिक्र करनी है कि हम क्या कर रहे हैं। फिर आप देखिए कि अल-काबिस के बारे में अहदीस में जो लफ्ज़ आता है वो भी देख लीजिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में गल्ले का रेट बढ़ गया, यानी जो ग्रेन होता है अनाज है वो बढ़ गया। तो लोगों ने अर्ज़ की कि अल्लाह के रसूल आप हमारे लिए नरख मुकर्रर कर दें, यानी कीमत रख दें कि बस इतनी हो, क्योंकि जब कीमतें बहुत बढ़ जाती हैं तो मुश्किल होती है। तो आपने फरमाया कि नरख यानी कीमतें, प्राइसेस मुकर्रर करने वाला तो अल्लाह ही है, वही रोज़ी तंग करने वाला, कुशादा करने वाला और खोलने वाला है, और बहुत रोज़ी देने वाला है। मैं चाहता हूँ कि अपने रब से इस हाल में मिलूँ कि तुम में से कोई मुझसे जान और माल के मामले में किसी जुल्म के बदले का मुतालबा करने वाला ना हो। ये जामे तिरमिजी की रिवायत है 1314। तो क्या पता चला कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस बात से डरते थे कि माली मामलात में वो किसी के बीच में आए और किसी पर ज्यादती हो जाए। और यहाँ से ये भी पता चला कि अल-काबिस है जो चीज़ों की कीमतें मुकर्रर करता है। मुराद यह है कि हर चीज़ को उसकी वैल्यू के मुताबिक ही रखना चाहिए, बहुत महंगा या बहुत सस्ता करके किसी एक पे जुल्म नहीं करना। दूसरी रिवायत हज़रत अबू हुरैरा से है, कहते हैं कि मैंने अल्लाह के नबी सल्लम से सुना कि आप फरमाते हैं कि यक़बिदुल्लाहुल अर्द व यतवि समावाति बियमीनिही सुम्मा यकूल अनल मलिक व इनल मलूकुल अर्द। क़्यामत के दिन अल्लाह ताला सारी ज़मीन को अपनी मुट्ठी में लेगा और आसमान को अपने दाएं हाथ में लपेट लेगा, फिर फरमाएगा आज हुकूमत मेरी है, सिर्फ मेरी है, दुनिया के बादशाह आज कहाँ है। अल्लाह अकबर। तो क्या पता चला कि अल-काबिस जब बंदे की रूह कब्ज करना चाहता है। तो ज़रा रिवायतें सुनिए और आप खुश हो जाएंगे सुनकर, कई चीज़ें आपको याद आ जाएंगी। पहली रिवायत तो बुखारी की है 595। आपने फरमाया कि अल्लाह ताला तुम्हारी रूहों को जब चाहता है कब्ज़ कर लेता है और जिस वक्त चाहता है वापस कर देता है। एक तो इशारा इसमें सोने का भी है, रात को जब सोते हैं तो हमारी रूह चली जाती है ना, और सुबह आते हैं तो वापस आ जाती है, मुराद है। इससे ये नहीं मतलब कि मुर्दा जिंदा हो गया, अगर वो भी कोई मानी लेगा तो वो मरने के बाद की तरफ इशारा है, यानी क्यामत के बाद दोबारा उठना या कब्र में मुर्दे का दोबारा जिंदा होना। इसी तरह सिलसिला सहीहा की रिवायत है 934। जब अल्लाह किसी बंदे की रूह किसी इलाके में कब्ज़ करना चाहे तो इस इलाके में इसके लिए कोई ज़रूरत पैदा कर देता है। अल्लाह अकबर। इस पे मुझे एक वाक्या याद आ गया, लिखा हुआ रिवायात में भी मौजूद है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास आपको तक अल्लाह ने कुछ अनयूजल ताकतें रखी हुई थी। तो कहते हैं कि एक दफ़ा उनकी महफिल में एक शख्स आया हुआ था, तो कोई दूसरा आने वाला शख्स उसको मुस्तकिल घूर रहा था। तो वो शख्स इतना खौफजदा हुआ, कहने लगा सुलेमान अलैहिस्सलाम को कि आप मुझे हवाओं के ज़रिए दूर भेज दें, मैं इस शख्स की नज़रों से छुपना चाहता हूँ। उन्होंने हवाओं को हुक्म दिया, हवाएं उसको उड़ाकर दूर ले गईं। कुरान में आता है कि एक महीने का सफ़र एक दिन रात में तय हो जाता था। जो ही वो बंदा दूसरी जगह पे गया तो वहाँ मलकुल मौत आए और उस बंदे की जान ले ली। वो इतनी दूर चला गया और वहाँ मर गया। दोबारा जब हज़रत सुलेमान का दरबार लगा तो वही शख्स उनको दिखा जो पहली दफ़ा उनको घूर रहा था, यानी जो भी बात का खुलासा है सिर्फ फीलिंग्स देने की बात है। तो उन्होंने कहा कि तुम उस दिन उस बंदे को इतना क्यों घूर रहे थे कि उसको तुम्हारी वजह से इतनी दूर भेजना पड़ा। तो कहने लगा कि मैं मलकुल मौत हूँ, अल्लाह ने मुझे इस बंदे की जान लेने पे मुकर्रर किया हुआ था, लेकिन मैं उसको इसलिए घूर रहा था कि उसकी जान तो यहाँ से महीनों के फासले पे निकलनी है और वो भी इधर बैठा हुआ है। बस उसकी वो कहना चाहिए कि देखने की कैफियत से उस पर रोबतारी हुआ और वो बंदा खुद वहां पहुंच गया। अब ये एक रिवायत है, शुरू से सुनी हुई, आज भी आपको मिल जाएगी किताबों में, लेकिन बात तो सच है, क्या कभी वाकई इंसान अपनी मौत की जगह पे चल के नहीं जाता? उठ के निकल कर जाना किसी और ने होता, कोई वहां पहुंच जाता, ये अलख़ाबीज़ है। जब किसी की जान जहां लेनी है उसके लिए असबाब भी वही मुहैया करता है। फिर इसी तरह कुछ सी रिवायात हैं, एक सिलसिला सहीहा की 979 है, अल्लाह फरमाते हैं कि मैं जो काम करता हूँ उसमें तरद्दुत नहीं करता, लेकिन मोमिन की रूह कब्ज़ करते हुए मुझे तरद्दुत होता है। वो मौत को नापसंद करता है और मैं इसकी तकलीफ़ को नापसंद करता हूँ। यानी अल्लाह ताला नहीं चाहते कि मोमिन की जान ले, क्योंकि जो ही मोमिन मरता है ना तो उसके साथ दिन की 5 नमाजें भी चली जाती हैं, रोज़े भी चले जाते हैं, ज़मीन के वो टुकड़े भी रोते हैं जहाँ बैठकर वो इबादत करता है। तो अल्लाह नहीं चाहते कि ईमान वाले दुनिया से जाएं, और बल्कि अच्छा है कि दुनिया में रौनक रहे उनके वजह से। लेकिन ज़ाहिर है कि कुल्लु नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत। फिर इसर तिर्मिज़ी की रिवायत है, जामे तिर्मिज़ी 1620, अल्लाह के रास्ते में जिहाद करने वाले का ज़ामिन मैं हूँ। अगर मैं इसकी रूह कब्ज़ करूँ तो इसको जन्नत का वारिस बनाऊँगा, और अगर मैं इसे इसके घर वापस ले आऊँ यानी घर भेज दूँ तो अजर या गनीमत के साथ वापस भेजूँगा। यानी जो अल्लाह के रास्ते में निकल गया तो जीत गए तो भी बाजी मात नहीं, यानी या जन्नतों में पहुँच जाएंगे तो या दुनिया में रहेंगे इसी तरह से। और ये जो अल्लाह ताला की कैफियत है ना कब्ज़ करने की, ये दिलों पे भी असर करती है। बहुत प्यारी दुआ थी अल्लाह के नबी जो मांगा करते थे, सही मुस्लिम की रिवायत है 6750। आपने फरमाया कि बनी आदम के सारे दिल एक दिल की सूरत में अल्लाह की उंगलियों से दो उंगलियों के दरमियान में है। वो जिस तरह चाहता है इसे इन सब को घुमाता है। इसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ करते हुए फरमाया, ए अल्लाह दिलों को फेरने वाले, हमारे दिलों को अपनी इताअत पर फेर दे। अल्लाहुम्मा मुसर्रिफ़ल कुलूबी सर्रिफ कुलूबना अला तुआतिक। तो ये दुआ भी याद कीजिए कि अल्लाह के लिए दिलों को बदलना कोई मुश्किल नहीं, अपनी और दूसरों की हिदायत की दुआ किया करें। अब सवाल ये होता है कि अल्लाह ताला तंगी देता है, तो अब आइए आखिरी हिस्सा जिस पे हम थोड़ी सी मजीद बात करेंगे, और वो क्या है कि तंगी देने में हिकमतें क्या हैं। हमारा तो दिल ये चाहता है ना कि किसी का रिस्क तंग ना हो, किसी का घर तंग ना हो, किसी को कोई मुश्किल ना आए, कोई माँ का बच्चा बीमार ना हो। तो पहली बात तो याद रखिए कि तंगी हो के कुशादगी है वो सब रब की तरफ से, पूरा इख्तियार है, सब कुछ उसके पास है। इंसान जो मर्जी कोशिश कर ले, सारा दिन मेहनत करके भी रात को मिलना वो ये जो रब चाहेगा, पहली बात। और घर बैठे सेठ साहब को लाखों का प्रॉफिट मिल जाए एक ही डील में, ये भी उसके हाथ में। बल्कि आप पढ़ते हैं तो कुराने पाक में तालूत का वाक्य आता है ना, दूसरे ही पारे के एंड पे, तो उसमें अल्लाह ताला क्या कहते हैं कि वल्लाह युती मुल्कहु मन यशा वल्लाहु वासिउन अलीम। अल्लाह जिसे चाहता है अपना मुल्क दे दे और अल्लाह कुशादगी करने वाला है। तो क्या पता चला कि इंसान की कोई काबिलियत नहीं है। हमारे यहाँ कहते हैं अंगूठा छाप, बड़ा सेठ है ना तो करोड़पति है, और MA मास्टर्स और PhDs किए हुए सड़कों पर रुलते हैं। कोई अपनी अक्ल पे ना जाए कि मैं बहुत अक्लमंद हूँ तो मुझे बहुत रिस्क मिलता है, मैं बड़ी अच्छी डील करता हूँ। नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ उसके हाथ में, जिसको चाहे जो दे दे। एक बुजुर्ग थे इमाम अहमद बिन इसहाक, कहा करते थे, तुम देखोगे बहुत से पढ़े लिखे समझदार कि इन पे रोजी के असबाब तंग होते हैं। आज भी सच है, कई दफ़ा सुनते हैं कि लोग रेड़ी लगा लेते हैं क्योंकि अब बच्चे फाके ज़्यादा हो गए, भूखों में चले गए, तो ये वो है। तो सवाल ये है जिस पे अब बात करनी है हमने, कि बहुत सारे लोग तो हुनर से ही नावाकिफ हैं फिर भी इतनी रोज़ी, और कितने ऐसे हैं जिनके पास कोई हुनर नहीं लेकिन उसने दिया, तो आखिर इसमें खेल क्या है? बच्चे भी पूछते हैं, गोरे भी पूछते हैं, इफ़ देर इज़ गॉड तो वाई देर आर सो मैनी हंग्री मैन इन दिस वर्ल्ड एंड वाई देर आर होमलेस। जिसको घर ही नहीं दिया उसका क्या कसूर है? और ये सारी बातें तो याद रखिए कि कई दफ़ा बहुत थोड़े ईमान वालों के पास बहुत सा माल होता है, और इसी तरह बहुत ही दीनदार जो है उनके पास नहीं होता, और ऑपोजिट भी होता है। तो हिकमतों में से पहली हिकमत, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अगर मैं तुम्हें ना रोकूं, एक लिमिट पे ना रखूं, तो तुम सरकश हो जाओगे। तो पहली हिकमत, सरकशी और फसाद बढ़ जाता है। चार पैसे के आ जाते हैं बंदे की चाल बदल जाती है, और इसमें आयत भी वही नोट करें जो ऊपर बताई है, वलऊ बसतल्लाहु रिज़्क़ली इबादिही लबगौ फिल अर्दी वलाकिन युनज़्ज़िलु बिक़दरि मा यशा। कि अगर अल्लाह लोगों पर रिस्क के दरवाजे खोल दे तो वो बागी हो जाए, सरकश हो जाए। आज भी देखिए पैसे ज्यादा होते हैं बच्चे बिगड़ जाते हैं, ये सूरह शुरा की आयत नंबर 27 है। अक्सर देखिए जो माँ बाप अपने बच्चों के लाड़ देखते, छोटी उम्र में उनके हाथों में सेलफोन्स देते, गाड़ियों की चाबियां देते, बच्चे बिगड़ जाते। और बंदे के पास 4 पैसे क्या आ जाए वो किसी को समझते ही नहीं है। तो गोया के पहली हिकमत क्या है कि अगर अल्लाह ताला सबको खुला ही दे देता, हर नेमत की फरावानी पड़ती, तो पूरी दुनिया सरकशी और फसाद से भर जाती। ना कोई किसी का मुख्ताज होता क्योंकि दौलत बहुत है, ना कोई काम करता ना दबता, तो जितनी दौलत बढ़ती उतनी हिरस और हवस भी बढ़ती। लोग एक दूसरे के मालों पे कब्जा करते, एक वादी सोने की मिल जाए इंसान दूसरी वादी लेने की कोशिश करे, ये भी हदीस से हमें पता चलता है। फिर आप देखिए जब माल ज्यादा होगा तो हुस्न की नुमाइश होगी, दिखावा होगा। तो अल्लाह ने हर एक को वलाक युनज़्ज़िलु बिक़दरि मा यशा, ये पहली हिकमत आप समझिएगा कि अल्लाह ने किसी को दबा के भी इसलिए रखा कि दुनिया का निज़ाम चले। वही बात है कि तू भी रानी मैं भी रानी तो कौन भरेगा पानी। तो इसलिए दुनिया में आपको तफावत दिखता है, किसी की सेहत बड़ी अच्छी है, कुव्वत में अच्छा है, कोई हुस्न जमाल में अच्छा है, किसी का सिल्म और हिकमत बहुत है। आप जितना मर्जी पढ़ लें आपको नहीं आनी हिकमत, अल्लाह दे देता है। और कोई एक नजर डालता है जाके फर्स्ट आता है, इल्म मिल जाता है। आप सारी रात पढ़ते रहे आपको नहीं समझ आती, एक को दिमाग ऐसा दिया कि एक दफा ओके ओके समझ गई सारी बात, किसी को 10 दफा समझाओ बात नहीं समझता, दूसरा पास बैठा कहता है आई विल डू इट, छोड़ो मैं करता हूँ। तो अल्लाह ने दुनिया का निज़ाम चलाना है और उसको पता है कहाँ क्या हो रहा है। तो अगर अल्लाह किसी की नेमत सल्ब कर लेता है तो उस पर ज्यादती नहीं करता, मसलहत होती है। दूसरी बात नोट कीजिएगा कि अल्लाह ताला इसलिए करते हैं कि उसकी आजमाइश है, लिया ब्लुवाकुम अय्युकुम अहसनु अमला। अल्लाह लोगों को देख रहा है, अल्लाह ताला किसी को खैर दे के आजमाता है कि देखो ये कितना को इसका कैलिपर है, और किसी को जरा सी नेमत से महरूम करके कहता है कि देखो ये कितना कर पाता है। आप देखिए ना कि जब आप दुनिया में इस तरीके से अपनी नेमतों को आजमाइश समझते हैं तो सोच से गुजारेंगे ना। वैसे गाड़ी ये आपके पास, दूसरे के मोटरसाइकिल है तो आपके पास गाड़ी की आजमाइश है, वो बेचारा मोटरसाइकिल की आजमाइश में पूरा उतर जाए बड़ी बात है। अब मोटरसाइकिल पे जाकर वो शो नहीं मारी जा सकती और वो गलत काम नहीं किए जा सकते जो कि गाड़ी पे बैठ के किए जा सकते हैं। तो अल्लाह सुबहाना ताला के ये काम हिकमतों से भरे पड़ रहे हैं, दिल में कभी ना रखिए। और अगर किसी को मुसीबत में देखा, आजमाइश में देखा, तो कभी ना कहें कि अल्लाह इससे नाराज है, पता नहीं इन्होंने क्या गुनाह किया है कि अल्लाह ने इनको पकड़ लिया है। नहीं, ये अल्लाह की आजमाइशें हैं। और अल्लाह ताला ऐसा करते हैं, आप पढ़िए सूरह फुरकान की आयत, वजअलना बादकुम लिबादिन फितना, हमने तुम में से बास को बास के लिए फितना बना दिया। तो ये आजमाइश है, अल्लाह ताला देखते हैं कि कौन किस तरह, कोई गरीब के सब्र का इम्तिहान है तो किसी तरफ किसी गनी के शुक्र का इम्तिहान है, कहीं बीमार की बीमारी का इम्तिहान है तो तंदुरुस्त की तंदुरुस्ती का भी इम्तिहान है। और इसका इलाज भी अल्लाह के नबी ने फिर बता दिया कि जब तुम्हारी नज़र किसी ऐसे शख्स पर पड़े जो माल दौलत में तुमसे ज्यादा है, या कुव्वत और सेहत में, इज्जत में, जलाल में, तो फिर उनको जरूर देख लो जो तुमसे कम है, ताकि हसद के गुनाह से भी बचो और अपनी कैफियत पे शुक्र अदा करो। फिर तीसरी हिकमत क्या है कि रब का मुकम्मल इख्तियार दिखता है, उसकी मर्जी, आप और मैं क्या कर सकते हैं, क्योंकि इन्ना रब्बक यबसुतु रिज़्क़ लिमन यशाउ व यक़दिर। तो अल्लाह ताला अपनी हिकमत से दिखाता है कि मैं क्या कर सकता हूँ, मैं कैसे कर सकता हूँ। और याद रखिए कि जिसको अल्लाह ताला की ये बातें समझ आ गई वो उसका पल्लू पकड़ ले। आज से दुआ सीखिए, या काबिस ए कब्ज़ करने वाले मेरे पे फराखी कर दे, ए तंगी करने वाले मेरे पे कुसत कर दे, ए फलाह मुझे इन तंगियों से निकाल दे। अल्लाह मते मुस्लिमा में हर एक तो किसी तंगी में, किसी परेशानी में, और सबसे बड़ी परेशानी जो इस वक्त बीमारियों की सूरत और इस तरह के लॉकडाउन में, इसको भी तो अल्लाह करे। अब फिर अल्लाह ने दिल में बात डाल दी, अलकाबिज़ वो है जो लोगों को कब्ज़े में रख के बैठा हुआ है। वैक्सीन आ गई, इलाज निकल आए, कोरोना अब जाएगा, अब एक और कोरोने का कोई बड़ा भाई आ गया, अब क्या करें, अलकाबिज़ है। जब वो बंदे को बांध के रखे कोई बंदे को घर से नहीं निकाल सकता। और याद रखिए कि अलकाबिज़ वो हस्ती है कि जिसके साथ आपका ताल्लुक जब बढ़ जाता है तो आप बेहतरीन तरीके से उसके साथ अपने मामले को करने लगते हैं। ज़रूरत इस बात की कि आपका मेरा अल्लाह ताला के साथ गहरा ताल्लुक हो, वो अपनी रहमत को देने के लिए हाथों को फैलाए हुए हमें लेनी नहीं आती। और फिर इसके बाद आप देखिए कि अल्लाह ताला के इस नाम के साथ कुछ दुआएं भी हैं जिसमें आप वुसअत भी मांगते हैं और फराखी भी मांग सकते हैं। मसलन रिज़्क़ की फराखी की एक दुआ जो हमें मुस्नद अहमद में मिलती है, अल्लाहुम्मा अबसुत अलैना मिन बरकातिका व रहमतिका व फ़दलिका व रिज़्क़िका। ऐ अल्लाह, तू हम पर अपनी बरकतों, अपनी रहमत, अपने फजल और अपने दिए हुए रिस्क में फरावानी और फराखी नसीब फरमा। इसी तरह से आप देखिए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी मौके पे एक जनाजा पढ़ा रहे थे, तो उस वक़्त एक दुआ पढ़ रहे थे। आप भी इसको पढ़ सकते हैं, बड़ी खूबसूरत दुआ है। क्योंकि हमें तो दुनिया से जाते हुए कब्र की तंगियों से भी तो बचना है, आगे की भी तो मुश्किलात हैं, दुनिया की भी तो बहुत सारी हैं। तो दुआ क्या है कि अल्लाहुम्मा अंता रब्बुहा वअंता खलकतहा वانت هديتها للإسلام وانت قبضت روحها وانت عالم بسرها الله أكبر وعلانيتها جئناك شفاعا فاغفر له। اے اللہ، اب دعا کریے کہ اس دعا کے الفاظ پہ ہمیں غور کرنا آ جائے، یعنی اللہم انت ربها، اے اللہ تو ہی اس کا رب ہے، تو نے ہی اس کو پیدا کیا، تو نے ہی اسے اسلام کی راہ دکھائی، تو نے ہی اس کی روح قبض کی ہے، تو اس کے ظاہر اور باطن کو زیادہ جاننے والا ہے، ہم اس کی سفارش کرنے آئے ہیں، اسے بخش دے۔ ابو داؤد کی روایت 3200۔ تو آپ دیکھیے کہ دعائے جنازہ جو ہوتی ہے نا، وہ بھی اصل میں ایک سفارش ہی ہوتی ہے۔ اور ایک اور بڑی پیاری دعا آپ اکثر پڑھتے ہیں، قرآن پاک کی شروع یا آخر میں بھی اکثر لوگ پڑھتے ہیں، اللهم اني اسالك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين واذا اردت بي وعدك فتنه فاقبضني اليك غير مفتون۔ اے اللہ، میں تجھ سے بھلے کام کرنے کی توفیق طلب کرتا ہوں، اور ناپسندیدہ اور منکر کاموں سے بچنا چاہتا ہوں، اور مسکینوں سے محبت کرنا چاہتا ہوں، اور جب تو اپنے بندوں کو کسی آزمائش میں ڈالنا چاہے تو فتنے میں ڈالے جانے سے پہلے مجھے اپنے پاس بلا لے۔ جامع ترمذی کی روایت 3233۔ آپ اس دعا کو نوٹ کیجئے۔ اللہ نہ کرے کہیں جان کو خطرہ ہو یا ایمان کو خطرہ ہو، کیسے لگے کہ جینے میں کہیں ایمان جا عزت نہ چلی جائے، تو پھر آپ یہ دعا مانگ سکتے ہیں۔ اور بڑے بڑے ائمہ کرام نے یہ دعائیں مانگی تھی جب فتنوں کا ظہور ہوا تھا۔ تو دعا کرتے ہیں کہ فتنوں میں کہیں ہمارا ایمان نہ چلا جائے۔ اس کے بعد آپ دیکھیے خوبصورت سی دعا، فیوریٹ دعا، آپ سب اس کو یاد کر لیں۔ میں نے اپنے استادوں سے سیکھا تھا کہ یہ وہ دعا ہے کہ بندہ اس کو یقین سے مانگے، اس کے بعد خوشی ضرور ملتی۔ کبھی کبھی زندگی میں ایسے دوراہے آ جاتے ہیں، بلکہ چوراہے ہی آ جاتے ہیں، سمجھ نہیں آتا جائیں کہ، تو سارے ہی دروازے بند، سب کھڑکیاں بند، کوئی آپشن نہیں، ہر رشتہ چھٹتا ہوا دکھتا ہے، اور صحت بھی خراب، مال بھی خراب، بہن بھائیوں سے کوئی لڑائی بھی ہو گئی، کسی کا رشتہ بھی ٹوٹ چھوٹ گیا۔ آپ اللہ کو یہ دعا کریں، اور اس دعا کو دکھی لوگوں کی دعا کہتے ہیں، کہ اللہم انی عبدک ابن عبدک ابن امتک ناصیتی بیدک ماد فی حکمک عدل فی قضاؤک اسألک بکل اسم ہو لک سمیت بہ نفسک او انزلتہ فی کتابک او علمتہ احدا من خلقک او استاثرت بہ فی علم الغیب عندک انت جل القرآن ربی قلبی و نور صدری و جلا حزنی و ذهاب همی۔ اس کے ترجمے پہ غور کیجئے، بالکل اپنے آپ کو رکھیے، دکھی چہرے اور پوسچر سے بھی آپ کے عاجزی دکھنی چاہیے۔ اے اللہ، یقیناً میں تیرا بندہ ہوں، اور تیرے ہی بندے اور تیری ہی کنیز کا بیٹا ہوں، یعنی میرے ماں باپ بھی تیرے بندے تھے، میری پیشانی تیرے ہاتھ میں، یعنی میری تقدیر تیرے ہاتھ میں، مجھ میں تیرا حکم جاری و ساری ہے، میرے بارے میں تیرا فیصلہ انصاف پر مبنی ہے، میں تیرے ہر اس خاص نام کے ذریعے تجھ سے سوال کرتا ہوں جو تو نے خود اپنا رکھا ہے، یا اسے اپنی کتاب میں نازل فرمائے، یعنی اللہ کے پاس جو اس کے نام ہے، آپ میں کتنے کو کر لیں گے؟ اللہ کے نبی کہتے ہیں جو تو نے اپنے پاس کہیں رکھے ہوئے یا اپنی کتاب میں رکھے، یعنی علم الغیب میں رکھے، قرآن میں دیے، لوح محفوظ میں، یا اپنی مخلوق میں سے کسی کو سکھایا، یعنی چڑیاں، طوطے، بلبل، مینڈک، تجھے کس کس زبان سے بلاتا ہے، میں ان ساری زبانوں سے تجھے بلاتا ہوں۔ کتنا پیار آتا ہوگا بندے پہ اللہ کو۔ اور جو تو نے اس علم غیب میں رکھنے پہ ترجیح دی ہے، میں ان سے بھی پکارتا ہوں، اور اب مانگا کیا؟ دیکھیں آپ کہتے ہیں اس کے بعد پتہ نہیں کیا مانگے گا بندہ۔ انت جل القرآن العظیم ربی قلبی ونور صدری وجلا حزنی، اس قرآن کو میرے دل کی بہار بنا دے اور میرے سینے کا نور بنا دے، میرے غم کا علاج اور میری فکر کا تریاق بنا دے۔ ایمان والوں کو یہی غم لگا رہتا، اور یہ قرآن واقعی آج کے بھی اس پرفتن دور میں آپ کو مطمئن اور مسرور رکھے ہوئے۔ اور پھر آخری چیزوں میں لفظ القابض، اللہ تعالیٰ کے اس نام سے متعلق معجزۃ الحسنہ کیا ہے؟ ہمیں اپنے دلوں کو نرم کرنا ہے، سوچ کے ساتھ کہ ہر تنگی کے ساتھ آسانی ہے، किसी चीज़ के कब्ज़ होने को अल्लाह की हिकमत समझते हुए कुशादगी के मंतज़र रहिए। यानी अगर आप वाकई किसी मुश्किलों की चक्की में फंस गए तो आसूदगी और आसाइश का इंतज़ार कीजिए। और यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी कब्ज़ और बस्त की बेहतरीन मिसाल है। कभी कुएं में है तो कभी मिस्र के तख्त पे है, कभी बाप की गोद में है तो कहीं जेल की तन्हाइयों में। तो ज़िंदगी में चलेगा, तिलकल अय्यामु नुदाविलुहा बैनन्नास। हमारी कुछ बहनें बहुत परेशान रहती हैं, क्या करें, मुश्किलें ही बड़ी। मेरे ही साथ हैं सारी, जब से बड़ी हुई हूँ यही चल रहा है, जवानी में ये। कोई बात नहीं, सब्र कीजिए, अल्लाह आपको बहुत देगा। कभी अपने किसी एक बच्चे के लिए कुड़ती है, मत कुड़िए, ये कही कि शर में से खैर निकाल, अल्लाह मेरी बच्ची या मेरे बच्चे का ईमान पक्का कर दे। फिर इस तरह कब्ज़ यानी किसी चीज़ के रुकने में भी आजमाइश और बस में भी है। बास लोगों को चूंकि अल्लाह इसलिए देता है कि वो उन पर खर्च करें जो कम दिए गए, तो आपका मेरा इस नाम को पढ़ने के बाद अमल होना चाहिए कि दिल की खानदानों में, आपके दोस्तों में, साथियों में जो तंगियों में फंसे हुए लोग हैं ना, उनको सहूलत दीजिए। किसी को कर्ज वापस लेना था, आसानी कर दें, क्योंकि हदीस में आता है कि जो कर्ज को आप आसानी करेगा ये बहुत बड़ी नेकी का अमल है। कुरान में भी मौजूद है, सूरह बकरा के 2nd 3rd लास्ट रुकू में आप देखेंगे। फिर इसी तरह एक और चीज़ इस नाम के साथ लीजिए कि नींद की हालत में चूंकि हमारी रूह कब्ज की जाती है, ये मौत की याद दहानी है। किसी को नहीं पता कि रूह ने वापस आने के नहीं, तो रात को सोने से पहले अज़कार पढ़कर सोएं, लोगों को माफ़ करके सोएं, अपने लेन देन को क्लियर करने की कोशिश करें, अपनी वसीयत को लिख के रखिए, क्या पता आज रात सोए तो सुबह उठना कि नहीं उठना। फिर इस तरह नेमतों को जैसे जिंदगी है, सेहत है, जवानी है, इसको अल्लाह की राह में लगाएं इससे पहले कि ये कब्ज कर ली जाए। और इसी तरह अगर किसी पे जुल्म करते हैं तो जुल्म करने वालों को इस नाम से तंबीह लेनी चाहिए कि अल्लाह आने वाहत में इक्तदार या ये नेमत छीन सकता है। किसी मासी पे ज्यादती ना करें, किसी अपने से छोटे को लेट डाउन ना करें। और फिर इसी तरह से आप देखिए कि सूरत नहल के आयत 112 में अल्लाह ने जो एक मिसाल दी है ना, असल में तो मक्का की मिसाल है, लेकिन असल में अल्लाह के अलकाबिज़ होने का इजहार है कि वह दरब अल्लाह मसलन करयतन कानत आमिनतम मुतमइनतन। अल्लाह ताला एक ऐसी बस्ती की मिसाल बयान करता है जो बड़ी इत्मीनान वाली ज़िंदगी बसर कर रही थी। हालांकि देखिए मुराद अहले बस्ती हैं, लेकिन ये असल में मुबालगे की इंतहा है कि बस्ती वालों से मुराद बस्ती ही कह दिया। और हर तरफ से बफरागत रिस्क पहुंच रहा था कि इसने अल्लाह की नेमतों का कुफरान शुरू कर दिया। तब अल्लाह ने इनके बाशिंदों को इनके करतूतों का ये मज़ा चखाया कि भूख और खौफ की मुसीबतें इन पर छा गईं। तो बहरहाल अलकाबिस नाम सुनने के बाद हमें चाहिए कि अल्लाह से डरने वाले बन जाएं, अल्लाह की पकड़ को जहन में रखिए, तकवा इख्तियार करें। आपस के तफरके छोड़ छोड़ कर हमने आपस में भाई भाई बनना है। और कुरान की आयत के अफ अमीन अहलुल कुरान यात यहुम बासुना बयातन बहुम नाइमुन। फिर क्या बस्तियों के लोग इससे बेखौफ हो गए हैं कि हमारी गिरफ्त कभी अचानक इन पर रात के वक्त ना आ जाए जबकि वो सोते पड़े हों, तो अल्लाह की पकड़ से डरना है। सूरत अल आराफ में बिल्कुल यही बात है, और सूरत अराफ का तो पूरा मौजू इंतजार का, जिसके पास वक्त हो वो ये तफसीर सुने, जिससे आप देखेंगे कि इंशाअल्लाह ताला आपका दिल खुल जाएगा। क्योंकि अल्लाह ताला के साथ ताल्लुक मजीद पुख्ता कब होता है, जब हम गौर व फिक्र और तदब्बर करते हैं। इसी तरह अल्लाह की पकड़ से बचने के लिए अल्लाह के नबी की तालीमात से रूगरदानी नहीं करनी कि कहीं अल्लाह की पकड़ ना आ जाए। अल्लाह का शुक्रगुजार बंदा बनना है, सिर्फ माल बनाने के लिए एक दूसरे के हकूक गसब नहीं करने, नाजायज़ कब्जे नहीं करने, जायदादों पे, प्लॉटों पे सब छोड़ के चले जाएंगे, अब्बा भी चले गए, आप भी चले जाएंगे, तो भाइयों को, बहनों को और चचाओं को, भतीजों को और जो भी उनके हैं उनके हिस्सों से महरूम नहीं करना। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें बेहतरीन तरीके से इन चीज़ों पे गौर व फिक्र की तौफीक दे। जज़ाकुमुल्लाह खैर। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तग़फिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।